नमस्कार, गुड इवनिंग शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। तो श्रोताओं, आज की तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र जी, आपका स्वागत है।
नमस्कार, गुड इवनिंग।
तो भारत के नजरिए से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है खेल की जगत के लिए, जहां बीसीसीआई ने कई अहम घोषणाएं की हैं आईपीएल को लेकर के। इसके अलावा भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन भी बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बीसीसीआई ने आईपीएल के प्लेऑफ मैच के लिए शेड्यूल और वेन्यू की घोषणा की, फाइनल अहमदाबाद में। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी, कल चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा कायम, अंडर 15 वर्ग में 27 पदक पक्के किए। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय कंपाउंड टीम का निराशाजनक प्रदर्शन, हालांकि व्यक्तिगत स्पर्धा के खिलाड़ी अगले दौर में पहुंचे। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया कल राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के आसार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो बीसीसीआई ने आज महत्वपूर्ण घोषणा की है, आईपीएल के प्लेऑफ मैच के लिए शेड्यूल और वेन्यू की घोषणा कर दी। और जबकि बेंगलुरु के बजाय अहमदाबाद लगातार दूसरे सत्र में 31 मई को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के फाइनल की मेजबानी करेगा, और पहला जो क्वालिफायर मैच होगा वो धर्मशाला में, जबकि दो अन्य प्लेऑफ मैच न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे। तो जो फाइनल मैच के लिए जो वेन्यू की का चयन किया गया है वो बदला क्यों गया बेंगलुरु से अहमदाबाद, क्या कारण हो सकते हैं?
देखिए, बेंगलुरु की नॉर्मली जो विनिंग टीम है, ऐसा जो कन्वेंशन है कि वहीं पे भी फाइनल होना चाहिए, जैसे बेंगलुरु में होना चाहिए था कि आरसीबी चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियन है
जी।
कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कारण की वजह से बीसीसीआई ने उसको अहमदाबाद में शिफ्ट किया है। इसका प्रधान कारण है क्योंकि जो कैपेसिटी है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, उस पर टिकट का जो बंटवारा होता है
जी।
कुछ बंटवारा पब्लिक के लिए होता है, कुछ डेलीगेट्स के लिए होता है। जब हमें जो जितना मालूम है कि उनका जो सरकार या जो कॉरपोरेशन है जिसके नजरे में जो जिसका अंडर में वो स्टेडियम आता है, उसने शायद कुछ कोटा ऑफ टिकट ज्यादा मांगा है जो बीसीसीआई को पसंद नहीं है।
Okay.
ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण है कि आपको शायद पता होगा कि ये चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक स्टैम्पीड भी हुआ था
जी।
इसका क्राउड मैनेजमेंट का भी एक ऊपर का एक क्वेश्चन मार्क है। हालांकि देखिए, फाइनल तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम में होगा, और इसलिए अहमदाबाद को चुना गया है।
तो क्या आप मौसम को भी एक कारण मान सकते हैं, क्योंकि अभी उस जगह पे कई बार बारिश के आसार होते हैं, तो कई बारिश की भेंट न चढ़ जाए मैच?
देखिए, मौसम तो कहीं कहीं पे भी खराब हो सकता है, जैसे अहमदाबाद में भी हो सकता है, धर्मशाला में भी हो सकता है, न्यू चंडीगढ़ में भी हो सकता है। वेदर को तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मई महीना ऐसा है कि मॉनसून का ऑनस्लॉट, जब भी मॉनसून आने वाला है तो कहीं भी हो सकता है, साउथ इंडिया में हो सकता है, नॉर्थ इंडिया हो सकता है, हालांकि चांसेस अहमदाबाद में कम है।
ओके, तो फाइनल मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। क्वालिफायर का पहला मैच 26 मई को धर्मशाला में, जबकि 27 मई को एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ में, और जो दूसरा क्वालिफायर मैच है 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और इधर हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। अभी 14वां ओवर चल रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में पंजाब किंग्स शीर्ष पर है, सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। दोनों के बीच अभी शीर्ष पर बने रहने की जंग चल रही है।
एब्सोल्युटली अजय, आपने एकदम सही कहा कि ये मैच दोनों टीमें चाहेंगे कि जीते। जैसे आपने ऑलरेडी हेडलाइंस में कहा है कि प्लेऑफ्स आने वाला है, हालांकि वैसे टीम्स को और भी मैचेस खेलना बाकी है और कुछ भी उलट फलट हो सकता है, मगर पंजाब किंग्स, आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स कोशिश करेंगे कि उनके सारे मैचेस कम से कम जीते और टॉप फोर में रहे।
और इससे पहले कल के मैच में अगर हम देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। दिल्ली में मैच खेला गया, पूरा मैच कैसा रहा ये जानने के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
नई दिल्ली में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बनाए। समीर रिजवी ने नाबाद 40 रन की पारी खेली, जबकि ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 रन बनाए। 156 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 17 ओवर और 3 गेंद में 2 विकेट पर 159 रन बनाकर मैच जीत लिया। संजू सैमसन ने 7 चौके और 6 छक्के जड़ते हुए नाबाद 87 रन बनाए। कार्तिक शर्मा ने संजू का साथ देते हुए 41 रन का योगदान दिया। सैमसन को उनकी जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ चेन्नई के 10 मैच में 10 अंक हो गए हैं। वहीं हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्ले ऑफ की राह मुश्किल हो गई है। मनोज स्पोर्ट्स कैन।
इस हार के साथ चेन्नई जहां प्ले ऑफ के लिए अभी भी अपनी पारी उन्होंने जीवंत रखा है अपने आप को, वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए राह मुश्किल हो गई है।
एकदम ठीक, जैसे मैंने अभी हमने डिस्कस किया है कि देखिए कोई भी जैसे टॉप फोर जो टीम्स है वो चाहेंगे कि वो जीते और टॉप फोर में रहे, मगर जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स कमबैक कर रहे हैं, स्पेशली पहला 3 मैच हारने के बावजूद भी जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह से उनका बॉलर्स ने कमबैक करवा रहे हैं, ये तो शानदार है। और चेन्नई सुपर किंग्स फिलहाल 6th पोजीशन में है, 10 मैच खेल के उनको 10 पॉइंट है और उनके साथ जो लीडर्स है उनके साथ सिर्फ 3 पॉइंट का डिफरेंस है। तो वो जो मैं बोल रहा था कि अभी भी इतना मैचेस बाकी है, टीम को 14 मैचेस खेलना है, चेन्नई सुपर किंग्स के पास और भी 4 मैचेस है, इस 4 मैचेस में अगर 2-3 मैच जीत भी गया तो शायद वो टॉप 4 में भी आ सकता है।
बिल्कुल, और वहीं अभी दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल हो गया है कि आने वाले 4 मैच उन्हें जीतने ही पड़ेंगे, अगर नहीं जीतती है तो फिर प्लेऑफ में जाने का उनका
एकदम टिक गया। क्योंकि देखिए जिस तरह से टीम का जो ट्रेंड है, जिस तरह से बॉलिंग स्पेशली 2 जो सीनियर बॉलर्स है खास करके अक्षर पटेल और कुलदीप, इनका बॉलिंग चल नहीं पा रहे, बैटिंग चल नहीं पा रहे। आप देखिए कल का स्कोर देखिए, 155 7 विकेट कोटला में, अपना होम ग्राउंड में अगर आप रन नहीं कर पाएंगे या कैप्टेंसी डिसीशन टीम मैनेजमेंट के डिसीशन ठीक से नहीं ले पाएंगे, आप आगे कैसे बढ़ेंगे।
जी, तो इस बीच हम बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने T20 की ताजा रैंकिंग जारी की है और बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि ईशान किशन दूसरे स्थान पर हैं। वहीं भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 7वें स्थान पर है और गेंदबाजों की रैंकिंग की बात करें तो भारत के वरुण चक्रवर्ती दूसरे और जसप्रीत बुमराह 5वें स्थान पर है। तो मौजूदा समय में IPL चल भी खेला जा रहा है और इस बीच जो रैंकिंग आई है, अभिषेक शर्मा तो शीर्ष पर बरकरार है, लेकिन ईशान किशन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अभी लंबे समय से वो मतलब टीम का कभी हिस्सा होंगे, 1.5 साल पहले उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा और अब इस तरह से कमबैक करना तारीफ के लायक है।
T20 का देखिए, T20 का ब्यूटी यही है कि जो आपने शायद हम लिटिल सरप्राइज की संजू सैमसन का नाम नहीं है, अभिषेक शर्मा का फॉर्म देखिए, IPL में बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। संजू सैमसन जिसने कल मैच जितवाया है चेन्नई सुपर किंग्स का, उनका फॉर्म देखिए बहुत ऑरेंज कैप के लिए दावेदार है। और ईशान तो अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, आप जो लाइव मैच चल रहा है उसमें हम बैटिंग देख रहे हैं, जिस तरह से बॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं उनको देखिए कि हैदराबाद के लिए अच्छी खबर है।
जी, अब बात मुक्केबाजी की। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, जहां भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक जीतकर आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 की लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया और 15 में से 14 पदक पक्के किए, जबकि अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। तारीफ के लायक है जूनियर खिलाड़ी,
बहुत ही तारीफ के लायक है। और ये भी ये है जया कि जो श्रोताओं को बताना चाहिए कि अंडर 15 अंडर 17 कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी, हमेशा की तरह भारतवर्ष के जो बॉक्सर्स हैं ये हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते रहा है। आप ये साल का जितना भी परफॉर्मेंस देखिए, जूनियर बॉक्सर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स है, 2028 में लॉस एंजेलिस, इनका जो 15 और 17 साल इसका जो पीक टाइम होता है 5-6 साल के बाद आएगा, या तब देखिएगा तब ओलंपिक्स के टाइम होगा, एशियन गेम्स के टाइम होगा, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम होगा, तो आप आराम से कह सकते हैं ये इसमें शायद हमारा भविष्य देखते हैं, भारतवर्ष का बॉक्सिंग भविष्य बहुत ही बेहतरीन है।
बिल्कुल उज्जवल भविष्य देखने को मिल रहा है। उधर शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय पुरुष और महिला कंपाउंड टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है और पोडियम पर जगह बनाने में दोनों ही टीमें असफल रही। हालांकि इस भारतीय टीम को प्रतियोगिता में पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा था।
हमेशा के देखिए, इसका पहले राउंड जो हुआ था वो मेक्सिको में भारतवर्ष ने एक गोल्ड मेडल जीता था
जी, विमेन्स टीम ने
जी, और विमेन्स टीम और मेन्स टीम दोनों में वर्ल्ड कप विनर्स है, वर्ल्ड चैंपियंस है, जाकि ज्योति वेनम है, प्रगति है, आदिति गोपीचंद स्वामी है, जिसे लड़के विमेन्स टीम में ये है, इसने क्वार्टर फाइनल में तुर्की के साथ हार चुके हैं। और मेन्स टीम में उजास देवतले, साहिल यादव और कुशल दलाल सबको ही एक्सपीरियंस्ड है। फिलहाल उसने जो कांटे का जो टक्कर हुआ था सेमीफाइनल में वो हार चुके थे, और चाइना के साथ ब्रॉन्ज प्लेऑफ में उसने हार चुके हैं। ये देखिए किस तरह क्यों हम निराशा हो रहे हैं, क्योंकि देखिए इस ये कंपाउंड जो है इसमें हमारा सबसे ज्यादा उम्मीद है, खास करके 4 महीने बाद जब हमारा एशियन गेम्स जापान में होंगे। अगर कोई गारंटीड है कि हमको इसमें गोल्ड मिलेगा ही मिलेगा, वो है कंपाउंड आर्चरी। मगर इसलिए शंघाई में प्रदर्शन जो हुआ है, अगर ये इस तरह का परफॉर्मेंस है तो थोड़ा तो निराशा तो होंगे, मगर हाँ अभी भी उम्मीद है, जैसे आपने कहा कि मिक्स्ड में आदिति और ओजास का जो पैर है वो वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत ऊपर में है, और इंडिविजुअल राउंड्स अभी भी बाकी है। शायद कल आप जो हेडलाइन बताएंगे आप अच्छी खबर बताएंगे।
हाँ, हालांकि अभी व्यक्तिगत स्पर्धा में राहत मिली है भारत को, क्योंकि सभी भारतीय कंपाउंड तीरंदाज अगले दौर में पहुंच गए हैं।
जी,
पुरुष वर्ग में अभिषेक वर्मा, साहिल यादव, कुशल दलाल उन्होंने अगले अगले राउंड में अपनी जगह बना ली है। वहीं महिला वर्ग में मधुरा और ज्योति, जबकि आदिति और प्रगति ने भी
एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कंपाउंड आर्चरी जो है
जी
लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 2020 इसको इंक्लूड किया गया है। हमारा प्रदर्शन ओलंपिक्स में कभी आर्चरी में अच्छा नहीं रहा है, जैसे दीपिका कुमारी का आप जानते ही होंगे कि, मगर ये जो चांसेस है, ये जो ज्योति है, आदिति है, उजास है, सबका चांसेस है कि 2028 लॉस एंजलिस में हमारा आर्चरी से जरूर मेडल आएगा।
बिल्कुल, और उम्मीद भी करते हैं। इस बीच एक खबर ये भी आई है कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया कल राष्ट्रीय खेल महासंघों यानी कि एनएसएफ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, और नई दिल्ली में होने वाले इस बैठक में चर्चा के कई मुख्य विषय हो सकते हैं, जिनमें से डोपिंग को अपराध घोषित करना और आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारियां भी शामिल हैं।
देखिए, जो श्रोताओं को बताना मैं चाहता हूं कि 25 और 26 अप्रैल को
जी
श्रीनगर में एक चिंतन शिविर हुआ है, उसमें एक खेल का श्रीनगर खेल एक रेजोल्यूशन तैयार किया गया है कि देश को आगे कैसे लिया जाए। इसमें तो स्टेट लेवल का साथ मीटिंग हुआ था, सारा जितना स्टेट्स आया था उनके साथ मीटिंग हुआ था मनसुख मांडविया जी का। अभी जो कल का जो आपका जो मीटिंग है ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला है, एशियन गेम्स आने वाला है, इसमें हमारा प्रदर्शन प्रिपरेशन कैसा रहेगा, एक तो एक तरफ है। दूसरा तरफ ये भी है कि डोपिंग का जो आपने कहा है कि आपको पता होगा कि भारतवर्ष दुनिया में एक नंबर डोपिंग में है
जी।
ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है,
बिल्कुल,
क्योंकि अगर वो हमको 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करना है, हमारा एक क्लीन इमेज वर्ल्ड के सामने दिखाना पड़ेगा, और इसके जिम्मेदारी एनएसएफ के ऊपर रहता है और उनके अंडर जितना एथलीट्स है, क्योंकि वाडा के पास हमारा रिपोर्ट अच्छा होना चाहिए। वैसे हमारे पास टाइम है इसको सुधारने के लिए, शायद ये मनसुख मांडविया जी कल ये विचार करेंगे, बातें करेंगे, और देश को आगे खेल का जगत में ग्लोबल इमेज कैसे सुधारा जा सकता है इसका डिस्कशन जरूर होगा।
बिल्कुल, खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अब चलते चलते एक और खबर ये बता दें कि दुनिया भर में कल यानी 7 मई को हर साल की तरह वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाएगा। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाने के पीछे की जो सोच होती है वो है कि बेहतर दुनिया के लिए एथलेटिक्स के महत्व को समझना, और हम कहते हैं ना कि एथलेटिक्स इज नोन एज द क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मंच है, इसमें इसके अंदर ही 100 से भी ज्यादा इवेंट्स हैं
जी, मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स।
बिल्कुल, तो इसका उद्देश्य है कि एथलेटिक्स के प्रति युवाओं को किस तरीके से प्रेरित किया जाए। चूंकि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। सौमित्र जी, आपका भी धन्यवाद।
नमस्कार
श्रोताओं, इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।